नमस्कार भारत, आज 18 मार्च दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में आज खत्म होगा सस्पेंस, विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा राज्य का नया मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, क्या होंगी चुनौतियां?
ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी, हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे।
रेहान फजल की विवेचना में सुनिएगा भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर की उस आखिरी पारी की दास्तान, जिसमें गावस्कर ने साबित किया था कि उम्र भले बढ़ गई हो लेकिन वो चूके नहीं हैं।
क्या बात है, क्या बात, गावस्कर, ये मैं तो कहता हूँ कि वो इनिंग जो है गावस्कर की, आपको सबको दिखानी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ एजुकेशन के तौर पर रखनी चाहिए।
होगी फिल्म समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तराखंड में आज भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर बना सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। आज लखनऊ में भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। आगरा के मशहूर मुगलकालीन स्मारक ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि ताजमहल चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के निशाने पर है। कानून व्यवस्था के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी ने बताया कि एक लिंक इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के निशाने पर है। ये ग्राफिक्स स्थानीय अखबारों में छपने के बाद पुलिस ने ताजमहल के अंदर और आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन नाम की संस्था ने पुष्टि की है कि यमन के समुद्र तट पर सोमाली शरणार्थियों से भरी नाव पर हमले में 30 सोमाली शरणार्थियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ये हमला होदेदा इलाके में हुआ। इस इलाके में हूथी विद्रोहियों पर यमन सरकार का समर्थन कर रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की तरफ से लगातार हवाई हमले जारी हैं। एक यमनी तटरक्षक मोहम्मद अल आले ने बताया कि इन शरणार्थियों के पास संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की संस्था से मिले कागजात थे और ये लोग यमन से सूडान जा रहे थे। ये लोग खोर्जे कैंप से सूडान के राज अल अरा जा रहे थे। इनके पास आधिकारिक कागजात भी थे, उन्हें लापरवाही से निशाना बनाया गया। मानवता के लिए अब कोई सम्मान बचा ही नहीं है। ये थे मोहम्मद अल आले के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्कल से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन टैपिंग के मामले में उन्होंने आरोपों पर बोलते हुए एक बार फिर मर्कल की भी फोन टैपिंग की तरफ इशारा कर दिया। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ के फोन टैपिंग में शामिल होने के आरोप पर ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस तरह सफाई दी।
जहां तक फोन टैपिंग की बात है तो पिछले प्रशासन की तरफ देखें तो हमारे बीच कुछ समानता है। और जैसे सवाल था तो शॉन स्पाइसर ने फॉक्स न्यूज़ पर आए एक काबिल और जिम्मेदार वकील के बयान के आधार पर कहा था, मैंने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की थी, अगर पूछना है तो मुझसे नहीं, फॉक्स न्यूज़ से पूछें। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन को खारिज करने के मैरीलैंड की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। मैरीलैंड की संघीय अदालत ने ट्रैवल बैन के शुरू होने के कुछ ही घंटों पहले इसे खारिज कर दिया था। इस संशोधित ट्रैवल बैन में 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों और शरणार्थियों के अमरीका में प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव था। हवाई की अदालत ने भी इस ट्रैवल बैन को खारिज कर दिया था। इसराइल ने पहली बार सीरियाई मिसाइल को अपने सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया है। ये जानकारी इसराइली मीडिया में सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक जमीन से हवा में मार करने वाली सीरिया की मिसाइल को इसराइल के अत्याधुनिक एरो सिस्टम ने मार गिराया है। सीरिया ने अपनी सीमा में हमला करने वाले इसराइली विमानों को निशाना बनाकर ये मिसाइल दागे थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbcsindhi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। यूपी विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के करीब एक हफ्ते बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज लखनऊ में विधायकों की बैठक बुलाई है और कल यानी 19 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ का दिन भी तय होने का संकेत दिया है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि पार्टी के भीतर के समीकरणों को देखते हुए ये काम बेहद मुश्किल भरा है, तो ये कहने वालों की भी कमी नहीं है कि नाम पहले से ही तय है, सिर्फ घोषणा नहीं की गई है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार राजधानी में एक साथ बैठेंगे और अपने नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। जिसका चुनाव करेंगे उसे 19 मार्च को शपथ दिलाई जाएगी, जिसकी सूचना कल शाम राजभवन की ओर से आई। वहीं पार्टी में मुख्यमंत्री का सवाल अभी भी उसी तरह बना हुआ है जैसा कि चुनाव से पहले बना हुआ था। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि विधायक खुद अपना नेता चुनेंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि नेता का चुनाव पहले ही हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
ये तो बड़ा मुश्किल काम था, जिस तरह का मैंडेट है 325 लोगों का कि मुख्यमंत्री चुनना, क्योंकि इसमें 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से आए हैं। उनके पास सिंबल भले कमल का है पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से जीत गया है। तीसरा, जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम मिला है, तो उन्हें अपनी तरह का अपना डिलीवरी हुआ है, अपना डिलीवरी मैन तलाशना है, इसलिए उनको दिक्कत लग रही है कि उनके हिसाब से कोई डिलीवरी करे।
हालांकि अभी तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी तय नहीं था कि ये कब होगा और कहां होगा, लेकिन राज्यपाल राम नाईक ने कार्यक्रम में जानकारी दी कि 19 तारीख को लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के अन्य सदस्य शपथ लेंगे। इस बीच राज्यपाल ने 16वीं विधानसभा के विघटन की भी कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी। वहीं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर शुक्रवार को भी चर्चाएं चलती रहीं। ये बात अलग है कि पार्टी के तमाम नेता शपथ ग्रहण स्थल का भी जायजा लेने और तैयारियों की समीक्षा में व्यस्त दिखे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी रही कि मीडिया में मुख्यमंत्री पद के लिए जो तमाम नाम चल रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि इनमें से किसी को भी हरी झंडी न मिले और कोई नया नाम सामने आ जाए, लेकिन योगेश मिश्र इससे इंकार करते हैं।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। हरियाणा पॉलिटिकली चार्ज स्टेट नहीं है, यूपी पॉलिटिकली चार्ज स्टेट है। हरियाणा की तुलना में यहाँ बहुत बड़ा है और यहाँ जो मैंडेट है उसमें 100 से अधिक लोग दूसरे दलों से आए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड दूसरे दलों में बहुत खराब था। तो ऐसी स्थिति में अचानक कोई आदमी निकाल करके आप बना दें, इतना तो संभव है, पर आप फिर उसे वो डिलीवरी ले सके और जो जनादेश प्रधानमंत्री को मिला है उस जनादेश के का कि आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतर सके, ये मुश्किल होगा। इसलिए कोई आदमी ऐसा नहीं निकल के आएगा, तो नोन आदमी होगा, अचानक अजूबा नाम नहीं आएगा।
इस बीच बतौर मुख्यमंत्री दो दिन से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा। हालांकि राजनाथ सिंह की तरह मनोज सिन्हा भी रेस में होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर गाजीपुर तक लोग उन्हें बधाइयां देते मिले और शुक्रवार को देर शाम वो खुद वाराणसी पहुंच गए और उनके पैतृक गांव में यज्ञ और हवन भी शुरू हो गए। बहरहाल आज नेताओं का जमावड़ा दिल्ली से लखनऊ हो रहा है और आज ही मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हफ्ते भर इस पर संशय बना रहा वो अपने आप में दिलचस्प है। पार्टी दफ्तर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की ये चुटीली टिप्पणी बेहद सटीक थी कि अब पता चला कि पार्टी चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर पाई थी। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सबकी निगाहें आज लखनऊ पर लगी होंगी। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दोपहर उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। रावत कैबिनेट में कांग्रेस से आए बागियों में से कितनों को जगह मिलेगी ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। त्रिवेंद्र रावत के सामने कई चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो पूरे 5 साल एक स्थायी सरकार की अगुवाई करते रह सकें। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रावत के नाम पर मुख्यमंत्री के रूप में मोहर लगते ही ये स्पष्ट हो गया कि RSS का खांटी कार्यकर्ता ही बीजेपी की सत्ता राजनीति का नया सिपहसालार बनेगा। क्षेत्र और जाति के अलावा संघ के पसंदीदा नेता के रूप में रावत आगे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से नजदीकी रावत के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई, वरना करीब आधा दर्जन नेता CM रेस में थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रावत ने अपनी प्राथमिकताएं बताई।
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार ये पारदर्शी सरकार होगी, ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे और हर समय हमारे सामने प्रदेश का गरीब, कि हम गरीबी का उन्मूलन, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। पलायन, बेरोजगारी, बुनियादी सेवाओं की बदहाली, राज्य पर बढ़ता कर्ज आदि बातें तो तब आएंगी जब प्रचंड बहुमत को एक स्थायी और गतिशील सरकार में परिवर्तित करने में रावत सफल रह पाए। 70 सीटों वाली विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत 12 कैबिनेट मंत्री होंगे। इनमें कांग्रेस से टूट कर आए और बीजेपी टिकट से जीते 9 बागियों को भी जगह देने की चुनौती है। माना जा रहा है कि कम से कम 4 पद इन बागियों को दिए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार में आने की आस लगाए बैठे बीजेपी विधायकों को खुश रखना भी चुनौती है। इसी से जुड़ा सवाल त्रिवेंद्र के लिए ये होगा कि क्या वे लाल बत्तियों का बड़ा वितरण करेंगे या एक अनुशासित संख्या रखेंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के एनडी तिवारी को छोड़कर कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल उत्तराखंड में अपने पद पर रह नहीं पाया है। बीजेपी के पुराने कार्यकालों में ही 5-5 बार और कांग्रेस में 2 बदलाव हुए हैं। गठन के महज 16.5 साल में नवा मुख्यमंत्री राज्य को यूं ही नहीं मिला है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
बीबीसी इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। क्या ये नतीजे इस बात का संकेत देते हैं कि जाति की राजनीति का दौर बीत चुका है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जाहिर कीजिए बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 18 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
कार्यक्रम में हम रेहान फजल की विवेचना सुने, उससे पहले आज के अखबारों की सुर्खियां जान लेते हैं। हरिता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हरिता, क्या है आज के अखबारों की सुर्खियां?
जी आज सुर्खियों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन सबसे पहले मेरी नजर पड़ी द हिंदू के पहले पन्ने पर। एक तस्वीर है, इसका कैप्शन है, आ गया है राजा, ये हरे आमों का ढेर है। हैदराबाद के एक बाजार में फलों का आम राजा आ चुका है। और इसी के साथ गर्मियों की दस्तक का आभास हो चुका है। गर्मियों की बात है तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरगर्मियों की चर्चा है। आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इन्हीं राज्यों में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू छापा है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से शिकायत है कि वो निर्णायक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बेहतर तरीके से निर्णय नहीं ले रहे हैं। और अब कांग्रेस को नए रोड मैप, नए चार्टर और प्रचार के नए तरीकों के साथ दोबारा खड़ा करने की ज़रूरत है। उन्होंने राहुल गांधी के प्रति अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जनसत्ता ने एक खबर दी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव देश का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ है। हर वोट पर राजनीतिक दलों ने खर्च किए हैं 750 रुपये। ये CMS का एक सर्वे है जिसके आधार पर यह कहा गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टियों ने 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिनमें करीब 1,000 रुपये वोट के बदले नोट पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आजकल उनकी ठनी हुई है और उनकी चर्चा है आज के अखबारों में। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 100 पुलिस वालों को लेकर जब DGP उन्हें वारंट देने गए तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का वारंट जारी कर अपना खुद मजाक बना रहा है। उन्होंने 7 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों और मुख्य न्यायाधीश से 14 करोड़ रुपये का हर्जाना देने को भी कहा है।
जी हरिता, अखबारों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 30 साल पहले बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सुनील गावस्कर ने स्पिन लेती पिच पर 96 रनों की एक पारी खेली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत की भूमि पर खेली गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी है। हालांकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये टेस्ट मात्र 16 रनों से हार गया था, लेकिन गावस्कर ने अपने आखिरी टेस्ट में अपनी बैटिंग से दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों को अपना लोहा मनवाया था। सुनील गावस्कर की उस महान इनिंग को याद कर रहे हैं रेहान फजल साप्ताहिक विवेचना में।
1987 के पाकिस्तान के भारत दौरे के पहले 4 टेस्टों में कोई परिणाम नहीं निकला था। रूखी पिच बनाने की आलोचना झेल रहे क्यूरेटर ने स्पिनरों के लिए एक टेलर मेड पिच बनाई थी। उस मैच में भारत के विकेटकीपर रहे किरण मोरे को वो पिच अभी तक याद है।
होली का माहौल था, होली जैसी पिच थी, वो पिच में कुछ रोल भी नहीं किया था, वैसे पिच छोड़ दी थी क्योंकि 5 टेस्ट मैच का सीरीज था, लास्ट टेस्ट मैच था, रिजल्ट लाने की कोशिश थी वो लास्ट टेस्ट मैच में। पहले गेंद से जो बॉल टर्न हो रही थी उससे मिट्टी भी निकल रही थी और जितने भी फास्ट बॉलर्स थे फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहे थे, जैसे कि कोई कपिल पाजी थे, कपिल पाजी ऑफ कटर मारते थे, वसीम अकरम आके उनकी जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग थी वो भी वो कटर मारते थे, तो बॉल उछलती थी, बॉल बड़ी टर्न भी लेती थी।
पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले खेलने का फैसला किया लेकिन पूरी टीम मात्र 116 के स्कोर पर निपट गई।
इलाही फेसिंग मनिंदर,
वेल टॉस्ड अप, इट्स बीइंग स्पून्ड अप एंड
मनिंदर सिंह ने सिर्फ 27 रन देकर 7 विकेट लिए। भारत ने जब खेलना शुरू किया तो उसका भी हश्र पाकिस्तान जैसा ही हुआ। वेंगसरकर ने अर्धशतक किया और वो और शास्त्री स्कोर को पाकिस्तान के पार ले गए लेकिन तभी कोलैप्स हुआ और पूरी टीम 145 पर सिमट गई। उस टीम में भारत की ओर से खेलने वाले मनिंदर सिंह याद करते हैं।
मुझे थोड़ा सा नाराजगी थी कुछ खिलाड़ियों से क्योंकि वेंगसरकर ने 50 रन इतने बढ़िया बनाए थे उस पिच के ऊपर जिस तरह से वो खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि अगर ये खेलते रहे तो हमें एक ऐसी लीड मिल जाएगी कि दोबारा फिर बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का मेरे हिसाब से क्योंकि वो पिच ऐसी थी जहां पर कि बहुत जरूरी था कोई भी बैट्समैन अगर उसकी नजर बैठ गई है, अगर उसको अंदाजा लग गया है कितनी घूम रही है बॉल, किस उछाल से आ रही है, तो उसे गेम को निकाल के ले जाना चाहिए था। लेकिन पिच ऐसी थी, शायद उनको 50 बनाने के बाद तसल्ली हो गई और उन्होंने उस तरह का अटैकिंग शॉट खेला।
दूसरी पारी में पाकिस्तान ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और वो स्कोर 249 तक खींच कर ले गए। पाकिस्तान के स्कोर को 249 तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका थी सलीम यूसुफ की, जिन्होंने 41 नाबाद रन बनाए और तौसीफ के साथ मिलकर 9 विकेट के लिए 51 रन जोड़े। अंततः मनिंदर ने सलीम जाफर को आउट कर पाकिस्तान की पारी का अंत किया लेकिन वो अपनी बॉलिंग से खुश नहीं थे।
मैंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, एक तो इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था, दूसरा हर कोई आके कोई ना कोई सलाह दे रहा था जिसमें मेरी जो अपनी सोच थी वो कहीं ना कहीं खो गई क्योंकि सीनियर खिलाड़ी सलाह दे रहे थे, कुछ सीनियर खिलाड़ी जो पहले खेले हुए थे वो कुछ सलाह दे रहे थे कि इस पिच के ऊपर इस तरह से बॉल करिएगा, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं खो गया और जो मैंने अपनी खुद की बॉलिंग की थी पहली इनिंग्स में उससे मैं भटक गया। उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो 50 रन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फालतू बन गए पाकिस्तान टीम के, मुझे लगता है 50 नहीं 70 रन फालतू बन गए।
भारत को जीतने के लिए 221 रनों का लक्ष्य मिला लेकिन वसीम अकरम ने लगातार 2 गेंदों पर श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ को आउट कर पाकिस्तान को आगे कर दिया। जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत के 4 विकेट पर 99 रन थे। अच्छी बात ये थी कि गावस्कर अभी भी 52 पर जमे हुए थे। उसी दिन शाम को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए रिसेप्शन रखा था। वहीं इकबाल कासिम की मुलाकात भारत के महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी से हुई थी।
5 बजे का टाइम था तो मैं तो उसी ऐसे लगा कि हम तो तैयार होके चलो चलते हैं यार, ये अटेंड कर लें, टेंशन हो रही है, बस दिन भी गुजर रहा, चल चलते हैं। बेदी साहब पहले आ गए तो शायद हमने उनसे हेलो हाई किया, तो बैठ गए उनके साथ ही बातें करने लगे। बातों मैंने उनको मुबारकबाद दी कि भाई मनिंदर सिंह आपका शागिर्द बहुत अच्छा है, उसने बड़ी जरूरत बॉलिंग की पहले इनिंग में या उनको ये आइडिया नहीं था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो बेचारों ने कहा जो यार क्या तेन की पता है ये देख, उन्होंने पहली इनिंग में तो ठीक है उसने आउट किए मगर यार दूसरी इनिंग में इतने रन करवा दिए, इतनी बॉलिंग है यार, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है और ऊपर से और उसके ऊपर जोर लगा रहा है, तो भाई बैट्समैन भी तो बॉलर भी तो विकेट भी तो सारे बीट हो रहे, तो ऐसे थोड़ी यार ऐसी विकेट पर गेंद करना चाहिए। तो कहता ये शागिर्द मेरा जरूर है लेकिन मैं आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बॉलिंग। मुझे वो चीज उनमें से ये नजर आई कि यार इस विकेट के ऊपर जोर लगाने की जरूरत नहीं, उनका कहने का मकसद था कि मनिंदर और अच्छी बॉलिंग कर सकता था, तो वो बेसिकली उन्होंने राय गुफ्तगु मनिंदर को डिस्क्राइब किया था, तो जो मैंने पिक किया और वो फिर हमने मैंने तौसीफ ने ये सोचा कि यार हम भी ये करते हैं कि इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाते, हमने गेंद को विकेट के अंदर ही रखना है, बस जोर नहीं लगाना है।
قاسم اور توصیف نے بیدی کی صلاح پر پورا عمل کیا، لیکن ان کا سامنا سنیل گاوسکر سے تھا جو اپنے انتم ٹیسٹ میں اپنے جیون کی سروشریشٹھ پاری کھیل رہے تھے۔
And it went past his 123
کے اسکور پر اظہر الدین بیٹ ہوئے اور انہوں نے اقبال قاسم کو ریٹرن کیچ دے دیا۔
And it's caught and bowled. What a magnificent catch. Absolute blinder by Iqbal Qasim and Pakistan have removed اظہر الدین with 123 for 4۔
شاستری اور گاوسکر اسکور کو 155 تک لے گئے، تبھی شاستری کو اقبال قاسم نے کاٹ اینڈ بولڈ کر دیا۔ ادھر گاوسکر نے نہ صرف ایک چھوڑ سنبھالا ہوا تھا بلکہ اقبال قاسم اور توصیف کی بھیانک ٹرن لیتی گیندوں پر اسٹروک پر اسٹروک لگا رہے تھے۔ میں نے کراچی فون کر اقبال قاسم سے پوچھا کہ گاوسکر کی اس اننگ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟
کیا بات ہے، کیا بات، گواسکر، یہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اننگ جو ہے گواسکر کی آپ کو سب کو دکھانی چاہیے۔ میں تو سوچتا ہوں ایک ایجوکیشن کے طور پر رکھنی چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ کیسے اسپن بالنگ کو کھیلنا چاہیے۔ لیسن ہے، اتنا اتنا بال بریک ہو رہا ہے اور وہ شخص کھڑا ہوا ہے، کیسے لیفٹ کرتا تھا، کس طریقے سے ایک شیٹ اینکر کی طرح دیوار بن کے کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جو بیٹنگ کی ہے وہ کمنڈیبل بیٹنگ کی ہے۔ ان کو گین کرنا جو تھا وہ بھی ایک اپنے اندر قسم کا ایک آنر انسان فیل کرتا ہے۔ ان کو بالر کے ہاتھ سے گیند نکلتا تھا، میرے ہاتھ سے اتنا بریک، اس ایسی وکٹ کے اوپر ان کو وہاں سے وارڈیا کرتے تھے کہ یار یہ گیند سیدھا رہے گا، یہ بال بریک ہوگا، لمبا یہ سائڈ پہ کرا ہوگا۔
جب یہ لگنے لگا تھا کہ گاوسکر اکیلے ہی بھارت کو پاکستان کے پار لے جائیں گے، انہیں اقبال قاسم کی ایک ایسی گیند ملی جسے کھیل پانا شاید کسی کے لیے سمبھو نہیں تھا۔
عظیم زبردست بھارت کا بیٹسمین جو پاکستان اور پاکستان کی فتح اور کامیابی کے درمیان ایک زبردست کسان کی طرح کھڑا تھا، آؤٹ۔
گاوسکر کے آؤٹ ہوتے ہی یہ صاف ہو گیا کہ پاکستان جیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روجر بینی نے چھکا لگا کر امید کی ایک کرن دکھائی، لیکن وہ کھنک تھا۔ میچ کے بعد عمران خان نے کہا کہ یہ سنیل گاوسکر کے جیون کی سروشریشٹھ پاری تھی۔ جاوید میاداد نے بھی اپنی آتمکتھا کٹنگ ایج میں لکھا، میں نے اسپن لیتے پچ پر اتنی بہترین پاری اپنے جیون میں نہیں دیکھی۔ سندر راجن نے ٹائمز آف انڈیا کے 17 مارچ 1987 کے انک میں لکھا، کیا بہترین کھیل، کیا غضب کی تکنیک، اس دن گاوسکر بھارت کی طرف سے ون مین آرمی تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، وہ دونوں چھوروں سے کھیل رہے تھے۔ سب سے بڑی تعریف مدثر نظر کی طرف سے آئی۔
ایک ایسی پچ پر جہاں ٹیسٹ میچ کروایا ہی نہیں جانا چاہیے تھا اور جہاں گیند اتنا اچھال اور میلوں ٹرن لے رہی تھی، گاوسکر نے بار بار اقبال قاسم کو ٹرن کے خلاف مڈ وکٹ اور مڈ آن پر مارا۔ ایسی پچ جس پر کسی اور کے لیے کھڑا ہونا بھر دشوار تھا، گاوسکر اس طرح بیٹنگ کر رہے تھے جیسے وہ کسی سیمنٹ پچ پر کھیل رہے ہوں۔ ہم سب کے لیے بیٹنگ کا یہ ایک ایسا پارٹ تھا جسے ہم تو کیا بلے بازوں کی آنے والی پیڑھیاں کبھی نہیں بھول پائیں گی۔
ریحان فضل، بی بی سی دلی۔
کیسی لگی آج کی ویوچنا ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اور اب رانچی میں آسٹریلیا کے خلاف بھارت کی چنوتی کتنی مضبوط ہے، جانتے ہیں اندو پانڈے سے۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں اندو پانڈے۔ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رانچی میں کھیلے جا رہے بارڈر گاوسکر ٹرافی کی تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن کی شروعات امیش یادو نے زوردار انداز میں کی۔ انہوں نے کل پہلے ہی گیند پر گلین میکسویل کا بلہ آدھا توڑ ڈالا۔ یادو کی گیند بازی میں اتنی طاقت دیکھنے کے بعد میکسویل بھی کافی حیران رہ گئے تھے۔ تو دوسری طرف امیش یادو رویندر جڈیجا کے لیے کہتے ہیں،
مجھے لگتا ہے کہ جڈو اپنے بیسٹ ٹائم میں بالنگ کر رہے ہیں اور آئی تھنک کافی 5 وکٹ ہال ہو گئے ان کو اور کافی اچھا ڈال رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے بالر ہیں کہ وکٹس کیسا بھی ہو بٹ ان کا جو بالنگ اسٹائل ہے وہ کسی بھی وکٹ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ جس حساب سے ان کا ویریشن ہے वो अपनी जगह नहीं छोड़ते एक्चुअली, वो एक जगह पे कंटिन्यूस डालते रहता है, क्योंकि अगर उसे थोड़ा सा भी रफ मिले तो उसे पता है कि मेरा एम कहाँ पे होना है, मुझे कहाँ पे बॉल डालना है। तो आई थिंक हिज बॉलिंग इज द बेस्ट टाइम, सो उसको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है।
भारत ने कल एक विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए थे। मुरली विजय 42 और चितेश्वर पुजारा ने 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत अभी ऑस्ट्रेलिया से 331 रन से पीछे है। खेल समाचारों में बस इतना ही।
इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म ट्रैप्ड। कैसी ये फिल्म और दर्शक इसे कितना पसंद करेंगे बता रहे हैं फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी और उनके साथ हैं बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान।
बचपन में मम्मी के पास दो हथियार होते थे, एक झापड़ और दूसरा डायलॉग, और डायलॉग ऐसा,
शैतानी की तो मैं चूहे वाले कमरे में बंद कर दूंगी। हाँ।
और उससे हम डर जाते थे, पर राजकुमार राव वो डरते नहीं है। राजकुमार राव की फिल्म आई है ट्रैप्ड, वो भी एक कमरे में, वो अपनी लापरवाही से बंद हो जाते हैं और उस फ्लैट में ट्रैप होने की कहानी है ट्रैप्ड। बनाया फिल्म को विक्रमादित्य मोटवानी ने, जिन्हें उड़ान लुटेरा जैसी फिल्में बनाई हैं। फिल्म लगी कैसी क्रिटिक अर्णब बनर्जी को, जो मेरे साथ इस समय स्टूडियो में ट्रैप्ड है।
ट्रैप्ड एक बहुत अनोखी फिल्म है, क्योंकि इसकी कहानी बहुत अनोखी है। एक लड़का जो फंस जाता है एक बड़ी बिल्डिंग में जो अनइनहैबिटेड है, और बुरी तरह फंस जाता है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब किसी न किसी समय ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन शायद इतना नहीं हम झेल पाते जितना कि इस फिल्म में मेन किरदार जो राजकुमार राव ने किया है वो दिखाया जाएगा।
मैंने सुना है कि फिल्म में राजकुमार राव ने 20 दिन तक सिर्फ गाजर और कॉफी पी है, क्या ये इतनी मेहनत जो उन्होंने की है वो दिखती है फिल्म में?
जी हाँ, बिल्कुल दिखती है, क्योंकि राजकुमार राव एक बहुत ही मेथड एक्टर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनको दिखाना था कि वो 5-6 दिन, बल्कि ये स्पष्ट नहीं है कितने दिन तक वो बंद रहते हैं। हम समझते हैं कि 5 से 10 दिन तक शायद वो बंद रहते हैं और वो कुछ भी खा सकते हैं उस दौरान, पानी नहीं मिलता है उनको, तो वो वेट लूज करते जाते हैं। तो वो दिखाने के लिए, एक स्टार्व्ड एक हंग्री लुक दिखाने के लिए ये जरूरी था कि वेट कम दिखाया जाए, और मुझे लगता है वो बखूबी उन्होंने निभाया है।
डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवानी, इससे पहले फिल्म उनकी उड़ान भी आई है और लुटेरे भी, क्या फर्क लगा इस फिल्म में उनसे?
देखिए, एक डायरेक्टर की खूबी वही होती है कि अलग अलग जॉनर की फिल्म बनाए। उड़ान एक बिल्कुल ही नई किस्म की फिल्म थी, लुटेरे एक क्लासिक कहानी पर आधारित थी लेकिन एक रोमांटिक फिल्म भी थी। यहाँ एक क्राइसिस एक सिचुएशन है जहाँ पे एक आदमी फंस जाता है, तो ये सोच के डर लगता है। वो सारा डर जो है डायरेक्टर ने एक बिल्डिंग के अंदर एक पात्र के साथ, एक कैरेक्टर के साथ जोड़ के रखा है, जिसकी वजह से आप एक तरह से एज ऑफ द सीट पे बने रहते हैं।
तो काम अच्छा रहा उनका जो समझ पाए?
जी हाँ, फिल्म की गति शुरू में बहुत तेज़ है, लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे लगा कि जैसे आपने हॉलीवुड कई ऐसे फिल्में देखी होंगी, 127 आवर्स थी, ऐसे और भी फिल्में बनी हैं वहाँ पे जहाँ पे आदमी ट्रैप्ड हो जाता है, तो वहाँ पे एक बिल्डअप ज़रूरी है एक टेंशन का, यानी इसके आगे क्या। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि वो फंस गए हैं, अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो बिल्डअप ज़रूरी है। वो क्या क्या करते हैं, वो मार सकते हैं जानवर को, चूहे को मार के खा सकते हैं, कॉकरोच को खा सकते हैं, पानी नहीं है तो क्या कर हैं वो, तो ये जो बिल्डअप है यहाँ पे राइटिंग वीक पड़ जाती है। हालांकि मैं कहूँगा कि इसमें साउंड बहुत खूबसूरत है, आलोका दास गुप्ता की जो साउंड है एक इस फिल्म के साथ जो साउंड होनी चाहिए वही है, यानी ऊपर की बिल्डिंग से नीचे का शोर कैसा होना चाहिए, हवा का साउंड कैसा होना चाहिए, बंद कमरे में साउंड कैसा होना चाहिए, वो शायद हमारी हिंदी फिल्म में बहुत कम उपयोग किया जाता है। उस हिसाब से ये फिल्म एक साउंड के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है।
तो फाइनली नंबर कितने देंगे आप ट्रैप को?
मैं ट्रैप को 5 में से 2.5 दूंगा।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तराखंड में आज भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली भाजपा के विधायक दल की बैठक आज लखनऊ में होगी। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आगरा के मशहूर ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि ताजमहल चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के निशाने पर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन नाम की संस्था ने पुष्टि की है कि यमन के समुद्र तट पर सोमाली शरणार्थियों से भरी नाव पर हमले में 30 सोमाली शरणार्थियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की पल पल बदलती खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए बने रहिए bbcindi.com के साथ। नमस्कार।